मेरे बहुत बहुत प्यारे साथियों, आप सभी को डॉक्टर विजय अग्रवाल का बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। मित्रों, आज 18 फरवरी 2019 है और आज के इस afis.com के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं और बहुत बहुत हार्दिक रूप से अभिनंदन भी करता हूं। और आप सबके साथ ही मैं विशेष रूप से स्वागत करता हूं अपने उन नौ नौजवान साथियों का जिन्होंने एकेडमी की 3 से 17 मार्च के बीच होने वाली क्लासेस के लिए अपना रजिस्ट्रेशन कराया है। इन साथियों के नाम हैं धर्मेंद्र कुमार प्रजापति, आपका गांव है अछोला, जिला प्रयागराज, उत्तर प्रदेश से। जयेंद्र सिंह भट्टी, आपका गांव है सोडवार्ड, जिला जूनागढ़, गुजरात से। दिग्विजय, रामनगर, राजस्थान से। राहुल असाटी, बालाघाट, मध्य प्रदेश से। राजकुमार, मुजफ्फरपुर, बिहार से। ध्रुपाल पारगी, सूरत, गुजरात से। राकेश कुमार मिश्रा, रीवा, मध्य प्रदेश से। संतोष कुमार मंडल, आपका गांव है खोरगाछ, जिला अररिया, बिहार से। और डॉन सिंह साहू, रायपुर, छत्तीसगढ़ से। तो धर्मेंद्र, जयेंद्र, दिग्विजय, राहुल, राजकुमार, ध्रुपाल, राकेश, संतोष और डान, आप सभी नौ साथियों का मैं एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के मुख्य विषय के तहत मैं आप सबसे भारत और पाकिस्तान की जो वर्तमान स्थिति है उनकी उनके संबंधों को लेकर के उसके बारे में कुछ बातें करूंगा। और नो डाउट कि अभी जो स्थितियां बनी हैं उसके केंद्र में कश्मीर में जो आतंकवादी हमला हुआ है वह रहा है, तो उसके बारे में हम लोग कुछ बातें करेंगे। और न्यूज में भी आपने देखा कि इसका काफी उल्लेख है और दूरदर्शन पर तो ये इससे संबंधित न्यूज काफी आ रही है, इस पर हम लोग बाद में बात करेंगे। पहले हम लोग थोड़ी दूसरी जो घटनाएं हैं उनको देख लेते हैं। मित्रों, आपने एक स्टेटमेंट न्यूज रेडियो न्यूज में सुना जिसमें भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे अध्यक्ष हैं उन्होंने एक बात कही कि असम में खासकर वो स्थिति को उस तरीके से बिगड़ने नहीं देंगे। उनके कहने का भाव यही था, शब्द दूसरे थे, खासकर नागरिकता को लेकर। देखिए इसका अर्थ क्या है, मैं थोड़ा सा स्पष्ट कर दूं क्योंकि इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं वो सामान्यतः सिविल सर्विस में पूछ लिए जाते हैं। आपको मालूम है कि असम में नागरिकता को लेकर खासकर उन लोगों को जो दूसरे देशों से असम में आकर के रह रहे हैं, जिन्हें आप शरणार्थी कह सकते हैं, जिन्हें आप घुसपैठिया भी कह सकते हैं, उनको लेकर के जो असम और खासकर उत्तर पूर्वी के राज्य हैं काफी परेशान हैं और उनकी यह मांग है कि इन्हें उनके देश वापस भेजा जाए। और उनमें जो शरणार्थी, आपको मालूम है कि उसमें कुछ बांग्लादेश के हैं, पाकिस्तान के हैं, अफगानिस्तान के हैं, इधर म्यांमार के भी हैं। हालांकि अभी जो नागरिकता कानून आया, जो विधेयक लाया गया था जो पारित नहीं हो सका, उसमें म्यांमार की चर्चा नहीं है। तो उनका कहना है कि इन सबके आ जाने के कारण एक तो जनसंख्या बढ़ गई है, रोजगार के अवसर उनके लिए कम हो गए हैं, पूरा स्ट्रक्चर उनका जो सोशल स्ट्रक्चर है वो गड़बड़ हो रहा है, उनकी अपनी संस्कृति भाषा उस पर दबाव पड़ रहा है, इनको बाहर भेजा जाए। और उसी के बाद से, या कह लीजिए कि उसके बाद से नहीं, ये मांग तो लंबे समय से हो रही है, बात को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार एक नागरिकता संशोधन विधेयक लेकर आई थी जो लोकसभा से तो पारित हो गया लेकिन राज्यसभा में पेश नहीं किया जा सका। उस विधेयक में बाकायदे कुछ व्यवस्थाएं ऐसी की गई थी, कुछ शर्तें रखी गई थी कि उनमें से कुछ लोगों को नागरिकता दी जा सकती थी भारत की, और उसको लेकर के फिर उत्तर पूर्व भारत में काफी विरोध चल रहा था। ठीक है, अब विधेयक तो चली, संशोधन विधेयक पारित नहीं हो सका। तो जो संकेत है भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष का, वो वहां की जनता को यही विश्वास दिलाने का है कि आप चिंता मत कीजिए, नागरिकता के मामले में हम सब बहुत संवेदनशील हैं और हम घुसपैठियों को, आप यूं कह लीजिए कि दूसरे राज्यों पर अधिकार जमाने नहीं देंगे या गड़बड़ियां पैदा करने नहीं देंगे, उनके कहने का आशय यह था। तो ये आपके दिमाग में स्पष्ट हो तो मैं समझता हूं कि बेहतर हुआ। दोस्तों, आज न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स के रूप में मैं कुछ आपको बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर क्लिपिंग्स प्रोवाइड कर रहा हूं। एक उसमें आप दिल्ली और केंद्र के बीच जो शक्तियों को लेकर आप कह लीजिए तनाव जो बना हुआ है उसको लेकर एक क्लिपिंग्स उससे संबंधित है। अभी सुप्रीम कोर्ट ने कुछ डिसीजन दिए हैं। आपको मालूम है कि दिल्ली राज्य की स्थिति थोड़ी सी अलग है क्योंकि केंद्र सरकार भी वही है ना। इससे पहले भी लगातार राज्य सरकार और जो दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं उनमें शक्तियों के विभाजन को लेकर के टकराव की स्थिति रही, उस पर भी कोर्ट ने अपना निर्णय दिया, फिर अभी कोर्ट अपना निर्णय दे रहा है और उसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि जो भ्रष्टाचार निवारक ब्यूरो है और जो जांच आयोग, इनको गठित करने का अधिकार तो केंद्र के पास होगा। देखिए, जब हम केंद्र के पास होगा कह रहे हैं तो आप इसका अर्थ यही लगाए कि लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास होगा। हाँ, जबकि जो दिल्ली सरकार है लोक अभियोजकों की नियुक्ति जैसे कुछ मामले उनके अधिकार क्षेत्र में रहेंगे। लेकिन कुछ ऐसे बिंदु थे जिन पर फैसला नहीं हो सका, जजेज में मतभेद थे, तो अब उसको बेंच को सौंप दिया गया है, उसमें देखते हैं कि क्या स्थिति आती है। तो ये जो मुद्दा है ये बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है और इसको लेकर के एक दो साल पहले सिविल सर्विस के मेंस में क्वेश्चन भी पूछा जा सका है, तो आप इसका थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, इस टॉपिक पर अपनी नजर गड़ाए रखेंगे और जब भी कुछ निर्णय सुप्रीम कोर्ट का आता है तो डेफिनेटली उस पर बहुत ध्यान से फिर आप पॉइंट्स नोट करके अपनी तैयारी कर लेंगे। जो दूसरी महत्वपूर्ण खबर अखबारों से जो मिल रही है मित्रों, वह है सूचना आयोग को लेकर। मुझे लगता है कि बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और अगर आप अनसॉल्व पेपर उठा करके देखेंगे तो काफी कुछ इसके ऊपर पूछा जाता है। सूचना आयुक्त, आपको मालूम है कि सूचना का अधिकार लागू किया गया, सूचना का अधिकार लागू करने के बाद राज्यों में भी और केंद्र में भी सूचना आयोग गठित कर दिए गए हैं, राइट। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो रही है, शुरू में तो ये जो सूचना का अधिकार था इसने जबरदस्त रूप से अपना प्रभाव दिखाया, लेकिन अब लगभग 14-15 साल के सफर के बाद लोग ये महसूस कर रहे हैं कि इसकी धार भोथरी हो चुकी है। इस मायने में भोथरी हो चुकी है कि लोग अब सरकारी कार्यालयों में जाकर के सूचनाएं मांगते हैं तो उन्हें सूचनाएं नहीं दी जाती हैं, जवाब ही नहीं दिया जाता, अगर जवाब देना है तो ये कह दिया जाता है सीधे सीधे कि गोपनीयता के तहत इसकी सूचना नहीं दी जा सकती, और फिर जब इसके खिलाफ अपील की जाती है आयोग में, चाहे वो राज्य आयोग हो या केंद्र आयोग, तो वहां भी इनकी सुनवाई सही तरीके से नहीं हो पाती है। हालांकि दंड लगाने का प्रावधान है कि उस अधिकारी पर दंड लगाया जाए जो सूचना प्रोवाइड नहीं कर रहा है, लेकिन देखने में आया है कि उसकी संख्या भी लगातार बहुत तेजी के साथ गिरती चली जा रही है। अभी जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है इसे लेकर वो है सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियां। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत स्पष्ट रूप से केंद्र सरकार से कहा है कि भाई आप सूचना आयोग में जो आयुक्त के पद हैं आप उनको भर क्यों नहीं रहे हैं, पहली बात, वो खाली क्यों पड़े रहते हैं, उनकी भी नियुक्ति उसी तरीके से की जानी चाहिए जिस तरीके से चुनाव आयोग में नियुक्तियां होती हैं। चुनाव आयोग में किस तरह से नियुक्तियां होती हैं, चुनाव आयोग में सामान्यतया जब पद खाली होने होते हैं उससे पहले ही खोज शुरू हो जाती है कि किसे चुनाव आयोग का आयुक्त बनाया जाना है, तो बकायदे पहले से ही कार्यवाहियां शुरू हो जाती हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ऐसा ही आप चुनाव आयुक्तों के बारे में, ये आपके सूचना आयुक्तों के बारे में क्यों नहीं किया जा सकता, किया जाना चाहिए। दूसरी उन्होंने टिप्पणी की है कि अब ये देखा जाने लगा है कि इन पदों पर, यानी कि सूचना आयुक्त जिसे इन्फॉर्मेशन कमिश्नर कहते हैं, उन पदों पर ज्यादातर ब्यूरोक्रेट्स के अपॉइंटमेंट होने लगे हैं, नौकरशाहों की नियुक्ति होने लगी है। इस पर भी सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी है कि नौकरशाहों की ही नियुक्ति क्यों की जा रही है, जबकि बकायदे जो कानून है उसके तहत ये व्यवस्था की गई है कि इसमें आप बाहर से भी, यानी कि जो पब्लिक के लोग हैं उनको भी लेकर के आएंगे। देखिए, जो नौकरशाहों की नियुक्ति करने की जहां तक बात है वो सरकार को सूट करते हैं। पहली बात तो यह है कि नौकरशाहों का अपना एक सोचने समझने का सिस्टम बन चुका होता है, वो सरकार के बहुत ज्यादा विरुद्ध नहीं जाते हैं, और दूसरा यह कि सरकार एक तरह से नौकरशाहों को सूचना आयुक्त बना करके उन्हें संतुष्ट भी कर देती है, खुश भी कर देती है, या यूं कह लीजिए कि उन पर एहसान लाद देती है, और जब वो एहसान से लद जाते हैं तो सरकार के खिलाफ फिर निर्णय देने में वो कहीं ना कहीं हिचक दिखाते हैं। तो जो सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी है कहीं ना कहीं इसी ओर इशारा कर रही है। तो मित्रों, ये दो पॉइंट्स आपको खासकर अपने दिमाग में जो हमारा सूचना आयोग है उसको लेकर ध्यान में रखना है, और इस पर यदि कोई प्रश्न पूछा जाता है तो कोशिश कीजिए कि आप इन दोनों नए तथ्यों को उसमें शामिल कर सकें। दोस्तों, आज के करंट कंटेंट के रूप में यूनिवर्सल बेसिक इनकम पर आपको आर्टिकल प्रोवाइड किया गया है जो इंडियन एक्सप्रेस में छपा था। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप देख रहे हैं कि फिर से इस पर बात होनी शुरू हो गई है, तो मैं चाहूंगा कि आप उसे थोड़े ध्यान से देखें और समझें, और महत्वपूर्ण जो भी लगे आपको आप उन्हें नोट कर लें। अब मैं मुख्य विषय पर दोस्तों आता हूं। देखिए, लगातार इस पर अखबारों में लिखा जा रहा है, बहस हो रही है, देश में भी बहस हो रही है, चैनल्स पर, न्यूज चैनल्स पर भी बहस हो रही है, और मैं चाहूंगा कि आप इन जो डिस्कशंस हो रहे हैं इनको आप ध्यान से सुने और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट करते जाएं। अब भारत की स्थिति क्या है? लगातार ये दबाव बन रहा है कि भारत को चुप नहीं बैठना चाहिए। जो पुलवामा में अटैक हुआ है, इस अटैक को कहीं ना कहीं इसके अगेंस्ट, इसके विरोध में आप कह लीजिए, कदम उठाए जाने चाहिए। ठीक, अब सवाल यह है कि जो कदम उठाए जाने चाहिए वो किस तरह के कदम हो, इसको लेकर के अभी काफी कुछ बहस चल रही है। और क्रमशः देखिए कि सरकार चुप नहीं है, वो अपने अपने स्तर पर जो भी कर सकती है वो करने की कोशिश कर रही है। अब ऐसा नहीं होता कि आप बदले में सीधे अटैक कर दें, है ना, वो युग जा चुका है। सरकार ने अभी तक क्या कदम उठाए हैं? देखिए, सबसे पहला कदम उसने ये उठाया कि वहां हमारे जो सीआरपीएफ के जवान हैं उनको फ्री हैंड दे दिया कि ठीक है, स्थिति को नियंत्रण में रखने के लिए आप जो करना चाहें आप कीजिए। नो डाउट कि जो करना चाहें का मतलब मनमानी से नहीं है, जब आपको जिस तरह की आवश्यकता महसूस होती है आप उस तरह से निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हैं। इससे पहले काफी कुछ उन पर रोक लगी थी, इस संदर्भ में इसे समझने की कोशिश कीजिए कि ठीक है, लोग पत्थर फेंक रहे हैं, नारे लगा रहे हैं, तो आप गोलियां नहीं चलाएंगे, इस तरह से बहुत से प्रतिबंध थे, और इसकी वजह से हमारे बहुत से जवान मारे भी जाते थे, घायल भी होते थे, स्थितियों को नियंत्रित करने में बहुत दिक्कत भी होती थी, और बकायदे जो हमारे सीआरपीएफ के जो ऑफिसर्स होते थे वो इन स्थितियों को बताते भी थे कि काम करना इसकी वजह से मुश्किल हो जाता है, तो अब उन्हें इस बात की छूट दे दी गई है। दूसरी चीज कि पाकिस्तान हमारे मोस्ट फेवर्ड नेशन में शामिल था, वो दर्जा वापस ले लिया गया है। मोस्ट फेवर्ड नेशन का मतलब है कि ये जो देश है हमारे लिए प्राथमिकता वाला देश है, और इसके यहां से अगर कोई भी वस्तु हम अपने यहां मंगाएंगे तो उसमें हम टैक्स की रियायत देंगे, तो बट नेचुरली कि वो वस्तु जो दूसरे देश से आएगी, अभी हम उसकी जगह पाकिस्तान को रख सकते हैं, तो पाकिस्तान से जो सामान हमारे यहां आएगा, चूंकि हमारा देश उस पर टैक्स नहीं लगाएगा तो उसके रेट रिजनेबल होंगे तो हमारे लोग उसे खरीदेंगे। तो अब जैसे ही मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा खत्म किया गया है, सीधी सी बात है कि अब भारत सरकार पाकिस्तान से आने वाले सामान पर किसी भी सीमा तक टैक्स लगा सकती है, और सीधी सी बात है कि जैसे ही उस पर टैक्स बढ़ाया जाएगा वो वस्तु महंगी हो जाएगी, भारतीय बाजार में फिर वो सर्वाइव नहीं कर सकेगी। तो इससे नो डाउट कि जो पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति है, भारत और पाकिस्तान के बीच जो व्यापार है उसमें असंतुलन आएगा और पाकिस्तान पर एक आर्थिक दबाव पड़ेगा। लेकिन कहा यह जा रहा है कि चूंकि बहुत थोड़ा ही व्यापार है तो शायद उतना दबाव न पड़े, लेकिन जो कदम उठाए गए हैं मैं उनकी बात आपको बता रहा हूं। जो तीसरे जो महत्वपूर्ण जो उपाय के रूप में कदम उठाया गया है दोस्तों, वो ये है कि कश्मीर में कुछ लीडर्स थे जिन्हें भारत सरकार सुरक्षा प्रदान करती थी। ये जो लीडर्स थे ये कश्मीरी ही थे और एक राजनीतिक नेता के तौर पर वहां काम कर रहे थे, उनसे अब सुरक्षा व्यवस्था उनकी हटा दी गई है। भारत सरकार का ये मानना है कि हम इन्हें सुरक्षा दे रहे हैं क्योंकि ये राजनेता हैं, लेकिन इनफैक्ट इन्हें पाकिस्तान से भी फंडिंग मिलती है और ये कहीं ना कहीं पाकिस्तानियों का ही समर्थन करते हुए जान पड़ रहे हैं, दिखाई पड़ रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में इन्हें क्यों सुरक्षा प्रदान की जाए। तो उनसे वो सुरक्षा जो व्यवस्था थी वो वापस ले ली गई है। दोस्तों, अब इसमें पेच क्या है, अब आप देखिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये किस तरीके से चल रहा है और किस तरीके से होगा और भारत को क्या करना चाहिए। अगर आपने एक्सपर्ट्स के डिस्कशन सुने हों तो जो एक तरह से मेच्योर्ड एक्सपर्ट हैं देखिए कहना बहुत आसान है कि अटैक कर देना चाहिए, सर्जिकल स्ट्राइक की तरह, इतना सरल नहीं होता है और बहुत व्यावहारिक भी नहीं होता है। तो ऐसी स्थिति में जो एक्सपर्ट है उनका कहना है कि भारत को सबसे पहले तो ये कोशिश करनी चाहिए कि जो पाकिस्तान है ये विश्व स्तर पर आतंकवादी देश घोषित हो जाए और एक तरह से अलग थलग पड़ जाए। देखिए अलग थलग पड़ने की पूरी संभावना है, अमेरिका अच्छी तरीके से समझ चुका है कि पाकिस्तान क्या है। आप बीच बीच में अमेरिका की इस तरह के स्टेटमेंट भी सुनेंगे कि हम उसको ये सहायता रोक रहे हैं, फलाना कर रहे हैं, और अमेरिका ने अभी ही सीधे कह दिया कि नहीं, भारत अपनी रक्षा करने के लिए स्वतंत्र है और हम भारत के साथ हैं। अमेरिका ने तो स्पष्ट घोषणा कर दी। फिलहाल पाकिस्तान के साथ है कौन? एक चीन। चीन ने ओपनली पाकिस्तान का समर्थन किया है और वो यही कह रहा है कि एक मजदूर अहमद करके, एक आप यूं कह मसूद अजहर नाम के एक व्यक्ति हैं जिन्होंने भारत पर कई हमले कराए हैं। जो हमारी संसद पर हमला हुआ था 2001 में उसको उसी ने अंजाम दिया था। पठानकोट और उड़ी में जो हमले की साजिश रची गई थी उसमें ही भी ये मसूद अजहर था, और इसी का जो आतंकवादी संगठन है उसी का नाम है जिसकी चर्चा आप बीच बीच में सुन रहे होंगे, जैश ए मोहम्मद। तो भारत कोशिश में लगातार है कि इसे आतंकवादी घोषित किया जा सके, लेकिन चीन उसे आतंकवादी घोषित करने के रास्ते में रोड़ा अटका रहा है। जब यह मामला सुरक्षा परिषद में जाता है तो चीन अपने वीटो पावर का इस्तेमाल करके उसे बचा लेता है। अभी भी चीन ने कह दिया कि नहीं नहीं, वो उसे आतंकवादी घोषित नहीं करेगा। तो चीन इतने जबरदस्त रूप से पाकिस्तान के समर्थन में है। तो दोस्तों अब देखना यह है कि भारत किस तरीके से चीन को विश्वास दिला पाता है, या चीन का पाकिस्तान के साथ मिलकर के जो दबाव इस क्षेत्र में बन रहा है उससे कैसे उबर पाता है, कितना विश्व समर्थन वो हासिल कर पाता है। दुनिया के बहुत से देशों ने इस आतंकवादी घटना की बहुत कड़े शब्दों में निंदा की है और भारत के साथ अपनी संवेदना और समर्थन व्यक्त भी किया है। अब आपको सिविल सर्विस की दृष्टि से करना यह है कि हमारी जो विदेश नीति है, अब आप देखिए कि उस विदेश नीति में क्या परिवर्तन आ रहा है, क्या कोई परिवर्तन आ रहा है, किस तरीके से अब हम विश्व का समर्थन जुटाने में सक्षम हो पा रहे हैं, इसको आप थोड़ा सा माइन्यूटली वाच कीजिएगा। और जहां तक डेली ऑडियो लेक्चर का सवाल है, जब भी कुछ ऐसे बिंदु सामने आएंगे तो डेफिनेटली मैं आप लोगों को उन बिंदुओं से अवगत कराऊंगा ही। तो दोस्तों मुख्य विषय के बारे में आज बस इतना ही। न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स मैं प्रोवाइड कर रहा हूं, आप सब देख लेंगे। ईमेल लिखने वाले दोस्तों को धन्यवाद देता हूं, और इन्हीं में से कुछ मित्रों के नाम हैं केबी मीना और प्रतीक सिंह थाणे महाराष्ट्र से। आप सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों इसी के साथ ही अब आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार।